तो आज विशेष दिन है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव। तो एक घंटे के लिए मैं बोलूंगा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के बारे में, तो आप ध्यान से सुनने का प्रयास कर सकते हैं। बल्कि आपने ये सारी चीजें सुनी भी होगी, लेकिन जब हम किसी महान भगवान के प्रिय भक्तों का गुणगान करते हैं तो उससे दो चीजें हमारे साथ घटित होती हैं। एक है कि सबसे अधिक शुद्धि हमारी होती है जब हम उस महान भक्त का गुणगान करते हैं, और दूसरा जब ऐसे महान भक्त का गुणगान करते हैं तो सर्वाधिक आनंद कृष्ण को होता है, क्योंकि कृष्ण को सबसे अधिक, अपने आप से अधिक कृष्ण किससे प्रेम करते हैं, किनसे करते हैं, अपने भक्तों से। इसलिए भगवान उद्धव का हाथ पकड़ते हुए मथुरा में कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे लक्ष्मी भी इतनी प्रिय नहीं है और न च शंकर, वैष्णवाना मेहता शंभु, शंकर भी इतने प्रिय नहीं है, मेरा भाई बलराम संकर्षण भी मुझे उतना प्रिय नहीं है जितने तुम मुझे प्रिय हो। इसलिए भगवान मथुरा में अकेले हो गए थे, अकेले भगवान थे, क्योंकि भगवान के हृदय में इतना सारा दुख था और इतना अधिक विरह वृंदावन के भक्तों से भगवान को हो रहा था। लेकिन भगवान के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जिसके पास जाकर अपने हृदय के दुखों को व्यक्त कर सके। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, भक्ति में आने के बाद एक ऐसा भक्त हमारे जीवन में होना चाहिए, एक ऐसा भक्त मित्र होना चाहिए कि हम हर चीज उससे क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना कि जब हम अपने हृदय को किसी से शेयर करते हैं तो हमारी बहुत बड़ी जो समस्या है वो ऐसे लगती है कि बहुत छोटी हो गई है। तो इसलिए भगवान मथुरा में अकेले थे तो भगवान के पास कोई नहीं था, हाँ, तो लेकिन एक व्यक्ति थे मथुरा में जिनसे भगवान को बहुत अधिक लगाव था, वो कौन थे, उद्धव। इसलिए भगवान कहते हैं उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाय, हे उद्धव, हे ब्रज ने कुछ कर दिया है जादू मेरे ऊपर, हाँ, कि मैं ब्रज को छोड़कर भी आया लेकिन फिर भी ब्रज भूमि को मैं भूल नहीं पा रहा हूं, इतना अधिक ब्रज भूमि के जो भक्त हैं उनसे भगवान का प्रेम का संबंध था, सेवा का संबंध था। तो ऐसे भगवान इससे ये दिखाते हैं कि वो सर्वाधिक किसी से प्रीति रखते हैं तो वो अपने भक्तों से। इसलिए हमें अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा लक्ष्य अचीव करने का प्रयास करना है तो वो यही करना है कि मुझे कृष्ण का एक विनम्र अनन्य भक्त बनना है, दास दासानुदास। हमें कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं बनना है, बहुत बड़ा ज्ञानी भी नहीं बनना है, और इस संसार में हमें बहुत फेमस भी नहीं बनना है। हम भक्तों के बीच में भी फेमस भक्त बनना चाहते हैं, नहीं, सेवा से मैं फेमस हो जाओ, लेक्चर देके मैं फेमस हो जाओ, गाकर मैं फेमस हो जाओ, तो वो मतलब ये सब चीजें क्या हैं कि हम अपने केवल जो अहंकार है उसको पोषित कर रहे हैं, और इससे केवल हम अपने मन को तुष्ट कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में तुष्टि किसकी करनी है, कृष्ण की। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, गीता में एक तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जीवन की सफलता है कृष्ण को संतुष्ट करना, फिर हमें किसी को अलग से संतुष्ट करने की प्रयास करना नहीं होगा। तो ये इसलिए है, ये हमारे जीवन का गोल होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, कि मेरे पास जीवित रहने के लिए बहुत कम दिन बचे हैं। मैं अभी आते आते नए खरीदू से बात कर रहा था, मैंने कहा मैं अभी कुछ दिन पहले वृंदावन जा रहा था, गाड़ी ड्राइव करते हुए मैंने जाकर एक गाड़ी को ठोक दिया, तो मुझे लगा कि अभी मृत्यु होने वाली है। मैंने कहा देखो कितना कम समय है व्यक्ति के पास, कभी भी हम क्या कर सकते हैं, शरीर को त्याग सकते हैं, तो उससे पहले, लेकिन हमारी इतनी योजनाएं होती हैं, इवन भक्ति में आने के बाद भी इतनी सारी योजना बनाते हैं, भूल जाते हैं कि मुझे भक्त बनना है। क्या बनना है? भक्त बनना भूल जाते हैं, बाकी सब कुछ बन लेते हैं और दूसरे को भी बनाते रहते हैं। हाँ, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, इसलिए भगवान हमसे कोई अपेक्षा करते हैं तो एक ही चीज की। हाँ, इसलिए कृष्ण चिल्लाते हुए बोलते गीता में, मन मना भव मत भक्तो, भव मत भक्तो कृष्ण कहते हैं। और एक बार नहीं बोला भगवान ने, कितनी बार बोला है मेरा भक्त बनो। फिर वो एक गीता में भक्त अष्टकम बोल दिया 12वें अध्याय में, वो भक्त मुझे प्रिय है, ये भक्त मुझे प्रिय है, ये प्रिय है। तो इसलिए सार सर्वस्व क्या है? भक्त बनना, लेकिन बड़ा भक्त बनना नहीं, फेमस भक्त बनने का प्रयास नहीं करना है, सुंदर भक्त। हमें अपने आप को आकर्षण का केंद्र बिंदु नहीं बनाना है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है? कृष्ण है। तो इसलिए ये सार है, और इसलिए भक्तों को कहा गया है सार ग्राही। भक्त कैसा होता है? सार ग्रहण करता है, जैसे हंस होता है। हंस के सामने है, आप दूध में पानी मिला के दे दो, लेकिन हंस क्या करेगा? दूध अलग और पानी अलग, दूध ही पिएगा। हमने तो नहीं देखा, लेकिन केवल सुना है, वृंदावन में भक्तों ने हंस को लेके आए थे वृंदावन की ब्रह्मचर्य आश्रम में, तो उन्होंने वैसे ही किया, देखा कि वो तो पूरा दूध पी लिया, पानी अलग से छोड़ दिया। तो उसी प्रकार से बहुत कुछ चीजें होती है भक्ति में आने के बाद भी, लेकिन जो तीक्ष्ण बुद्धि वाला भक्त है वो सार को ग्रहण करता है। और सार क्या है? उद्धव को भगवान श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में बताते हैं, जहां उद्धव गीता है। ये अर्जुन की गीता का एडवांस वर्जन कहाँ है वो देखा जाए तो कहाँ है? उद्धव गीता में। अर्जुन गीता के बाद दूसरी गीता है भागवतम में उद्धव गीता, जिसमें प्रैक्टिस करवाते भगवान भक्ति की। गीता में भगवान संबंध का ज्ञान बताते हैं, और संबंध के बाद कौन सा आता है? अभिधेय। अभिधेय मीन्स प्रैक्टिस करना भगवान के साथ उस संबंध को जगाने के लिए। जैसे नया नया शादी हो जाता है तो लड़की को पता रहता है कि ये मेरे पति हैं, उसको केवल यही ज्ञान है। क्या ज्ञान है? ये मेरे पति है और मैं उनकी पत्नी हूं, इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। लेकिन उन संबंधों को वास्तविक रूप में स्थापित करने के लिए, फलीभूत करने के लिए, उस युवती को क्या करना होगा? उस पत्नी को प्रैक्टिकली सेवा करनी पड़ेगी, तो फिर वो संबंध वो महसूस करेगी हृदय में, हाँ ये मेरे पति है। वैसे ही हमें ज्ञान है, लेकिन उसका अभ्यास जब हम करते हैं प्रैक्टिस, तो अभिधेय कहलाता है। और तीसरा धरातल कौन सा होता है? प्रयोजन। प्रयोजन का अर्थ होता है गोल, लक्ष्य। इसलिए कोई भी ग्रंथ या कोई भी पुस्तक, पुराण, कुछ भी आप उठा लो, उनमें ये तीन प्रकार का ज्ञान होता है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। और किसी चीज की चर्चा, चौथी चीज की चर्चा किसी भी ग्रंथ में या पुस्तक में नहीं होती। तो इसलिए भगवान उद्धव को वहां कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति कौन है इस संसार में, सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? हमें लगता है श्लोकों को याद करना और बहुत सारे नॉलेज रखना वो ज्ञानी है, नहीं। ऐसे हजारों लोग मिल सकते हैं जिनको गीता कंठस्थ है, भागवत कंठस्थ है, लेकिन वो भगवान के भक्त नहीं है, अनन्य भक्त नहीं है। तो वहां उद्धव को भगवान कहते हैं ज्ञानी कौन है, एक सरल छोटे से दो शब्दों में भगवान बोलते हैं वहां। वो कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि उद्धव को, अहम एव ही इष्ट। भगवान कहते हैं कि जिसने ये स्वीकारा है कि कृष्ण ही मेरे इष्ट है, बस उसके अलावा कोई नहीं, इसको कहते सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम रज। एक बार एक भक्त बोलता है, पहले तो व्यक्ति को धर्म पता होना चाहिए तब वो परित्याग करेगा, अभी धार्मिक जीवन ही नहीं रहा तो क्या धर्म का परित्याग करके भगवान की शरण ग्रहण करेगा कलियुगा में। हाँ, तो भगवान कहते एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। तो ज्ञानी वो है जो भगवान को ही सर्वे सर्वा अपना परम इष्ट के रूप में स्वीकारता है। जैसे पांडव थे, पांडवों ने कृष्ण के अलावा किसी की शरण नहीं ग्रहण की। कुछ भी हो जाए उनके जीवन में इष्ट बदला उन्होंने नहीं। यहाँ इस संसार में लोग बदल, हम अपना इष्ट बदलते रहते हैं। आज इस व्यक्ति को अपना इष्ट बनाते हैं, कभी अलग देवता को बनाते हैं, हाँ कभी और किसी को। तो लेकिन जो भक्त है वो बिल्कुल फिक्स होता है, चाहे उसके जीवन में हाँ कितनी ही उथल पुथल क्यों ना हो, लेकिन कृष्ण के चरणों के अलावा वो किसी की शरण ग्रहण नहीं करता। अहम एव ही इष्ट, ये जिसने स्वीकारा है वो वास्तव में ज्ञानी है। इसलिए भगवान ने यही बात भगवद गीता में भी बोली, बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम। तो ज्ञान का परम, वहां भी भगवान गीता में कहते कि कौन है वो ज्ञानी जिसने वासुदेव को ही एकमात्र स्वीकारा है परम सत्य के रूप में। हाँ, तो इसलिए भगवान भक्तों के इष्ट हैं, और भगवान के इष्ट कौन है, उनके भक्त हैं। इसलिए भगवान कहते हैं भागवत में, अहम भक्तो पराधीन, मैं भक्त के आधीन हूं, भक्त ने मुझे खरीद लिया है। हाँ, साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम, साधु मेरे हृदय में निवास करता है और मैं साधु के हृदय में निवास करता हूं। तो ये भगवान के वचन है, तो इन वचनों को बार बार समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जिसके द्वारा क्या होता है कि हमारे अंदर भगवत सेवा की निष्ठा जागृत होती है और हम भगवत सेवा में फिक्स हो जाते हैं। भगवत नाम, हाँ उनकी कई प्रकार से सेवा आदि करने के लिए। हाँ, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान के भक्तों का गुणगान हमारी जिह्वा से होना चाहिए। इसलिए हरि भक्ति सुदोदय ग्रंथ है जिसमें प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अक्षनो फलम, कि आंखों का फल क्या है, भक्तों को देखना। कानों का फल क्या है, भक्तों के बारे में सुनना। हाँ, तो ये सारा ऐसा वर्णन करते हैं सारे इंद्रियों का। कहते ये इंद्रिया दी इसलिए हैं जिनको हम भगवान और उनके भक्तों की सेवा में नियुक्त करें, जिसके द्वारा ये जो इंद्रिया विष युक्त सर्प के भांति हैं वो हमारे नियंत्रण में आती हैं और वो शुद्ध हो जाती हैं भगवान की सेवा के लिए। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं ऋषि केना ऋषि केशः सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति का सरल अर्थ क्या है, अपनी सारी इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी कृष्ण की सेवा करना, उसको भक्ति कहते हैं। तो जो भी हम अपने इंद्रियों से करते हैं वो कृष्ण को आनंद देने के लिए करना चाहिए। भक्ति में हम जब करते क्यों मुझे आनंद आ रहा है तो उसे शुद्धि नहीं होगी। हाँ, किसको आनंद देना है, मुझे अच्छा लगे या ना लगे, किसको आनंद देने का प्रयास करना है, कृष्ण को। और जितना हम इस भावना से करेंगे भक्ति का अभ्यास, उतना ही तीव्र गति से भगवान कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में प्रगाढ़ आसक्ति जागृत हो जाएगी। हमें हमेशा सोचना चाहिए, भक्ति का मतलब है हर कार्य करते समय व्यक्ति को सोचना चाहिए, क्या मैं ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, क्या ये गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, क्या एक वैष्णव की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। यदि डाउट है नहीं तो फिर वो भक्ति नहीं है। हाँ, वो केवल क्या है, अपने मनगढ़ंत विचारों को पुष्ट करने की बात है। हाँ, तो इसलिए ये परम या बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की सबसे बड़ी कोई देन है, सबसे बड़ा कोई योगदान हमारे लिए है इस विश्व के लिए, तो वो क्या है बताइए। हाँ, आज सुना होगा आपने, तो सबसे बड़ा योगदान क्या है कि उन्होंने एक ऐसा शिष्य दे दिया जिसने क्या किया, पूरे विश्व को विश्व का उद्धार किया। इसलिए एक महान भक्त हुए थे चैतन्य महाप्रभु के थोड़ा साल बाद, जिनका नाम था देवकी नंद दास। उन्होंने एक गीत लिखा था जिसमें वो कहते हैं, ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। महाप्रभु के भक्त ऐसे पावरफुल है, एक एक भक्त पूरे ब्रह्मांड को तारने का सामर्थ्य रखता है। हाँ, तो ये प्रभुपाद ऐसे आचार्य हुए हैं। इसलिए ये जो मूड है हमारी परंपरा का वो यही है कि उनको बहुत ज्यादा अनुयायी, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स की नीड नहीं है। कलयुग में जो साधुज महात्माज हैं सो कॉल्ड, वो ज्यादातर किसके पीछे लगे रहते हैं, धनम देही, अनुयायी चाहिए मुझे, बहुत फॉलोअर्स चाहिए। तो लेकिन गौड़िया संप्रदाय में जो महान महान आचार्य हुए हैं वो इसके पीछे पागल नहीं है कि मैं हजारों शिष्य बनाऊंगा, हजारों अनुयायी बनाऊंगा, उसके लिए वो इतने लालायित नहीं है। वो तो चाहते हैं जिसको भी भक्त बनाओ वो भगवान की सेवा में एक्सपर्ट बने। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि मैंने जो भी मंदिर मठ आदि जो भी किया है, इन सब का होते हुए उसका परिणाम एक यदि हो जाए कि एक व्यक्ति भक्त बन जाए, हाँ अच्छा शुद्ध भक्त, तो मैं समझूंगा कि जो भी मैंने सारा प्रयास किया है वो सफल है। या भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि एक व्यक्ति को शुद्ध भक्त बनाने के लिए यदि मुझे सारे मठ मंदिर सब सेल करना पड़े तो भी तैयार हूं, लेकिन वो व्यक्ति क्या बन जाए, भक्त बन जाए, ये आकांक्षा है। एक्चुअली जो शुद्ध साधु है, शुद्ध संत है, वैष्णव है, वो कोई और अपेक्षा नहीं रखते, वो केवल एक ही अपेक्षा रखते हैं एक व्यक्ति से, जीव से, कि वो भगवान का महान भक्त बने। उनको कुछ अपना पर्सनल मोटिव नहीं है, वो यही चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान के चरणों में आया है वो 100% क्या बने, शुद्ध बने, यही उनकी एकमात्र कामना है। इसलिए हमारे संप्रदाय में जो भी महान महान आचार्यगण हुए हैं उन्होंने भक्तों को स्वीकार किया है और वो सारे महान महान भक्त बने हैं आगे चलकर। तो ऐसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे। हाँ, तो ये तीन भक्ति इन तीनों के नाम में है, भक्ति वेदांत, उनके बाद कौन है, भक्ति सिद्धांत, उनके बाद भक्ति विनोद। हाँ, बीच में गौर किशोरदास बाबा जी हैं, लेकिन क्या है, तीनों भक्ति भक्ति हैं, भक्ति वेदांत, भक्ति सिद्धांत, भक्ति विनोद। भक्ति सिद्धांत मीन्स फिलोसफी, विनोद मीन्स पास्ट टाइम, लीला है। तो ये सीक्वेंस है। हाँ, प्रभुपाद हमें संबंध ज्ञान आदि देते हैं और प्रैक्टिस करना सिखाते हैं। किसके आधार पर भगवत भक्ति का अभ्यास करते हैं हम, सिद्धांत के आधार पर। इसलिए शास्त्र कहते हैं सिद्धांत बलिया चित्ते ना करा आलस। प्रवचन में हमें बहुत हर्षप्रद कथाएं सुनना बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सारी स्टोरीज हो, लीलाएं हो, हंसते रहे, चिल्लाते रहे, होता है कि क्या प्रवचन था। हाँ, लेकिन जब सिद्धांत आता है, सिद्धांत फिलोसॉफी की चर्चा होती है तो पूरा सर से ऊपर जाता है, ऐसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बाउंस हो रहा है, लगता है कि बहुत आज कठिन एक घंटा मेरे लिए बहुत तपस्या थी, ऐसे लग रहा था कि आग के कुंड में बिठा दिया था। हाँ, इसलिए जो सर्वसाधारण लोग क्या है, कृष्ण कृष्ण राधे राधे वृंदावन वृंदावन करते रहते हैं और साइड में नाचते गाते हैं, साइड में जाकर बीड़ी फूकते हैं या फिर एक सखी को ढूंढते हैं। वो कहते हैं ना, सखी रानुगत करो, तो वो सखी ढूंढते हैं किसी एक जगह। हाँ, तो वो क्या है, ऐसे भावुक लोग जो भक्ति सिद्धांत के आधार पर नहीं करते। हाँ, भक्ति हम करते हैं उसके लिए क्या होना चाहिए, सिद्धांत होना चाहिए, फिलोसफी होनी चाहिए। हाँ, और जब हमारा भक्ति सिद्धांत के आधार पर करते हैं और उन्नत हो जाते हैं तो फिर हम अनुभव करते हैं, किस चीज को समझ पाते हैं, भक्ति विनोद को। इसलिए वो कहते हैं भक्ति सिद्धांत को समझना है तो पहले किसको समझना पड़ेगा? भक्ति वेदांत, ऐसी भक्ति वेदांत को समझना पड़ेगा। और कितना सरल है प्रभुपाद के, बल्कि प्रभुपाद ने बहुत रॉयल लाइफ दिया है, उनके नाम में क्या लगा हुआ है? ऐसी। हमें भगवान को समझने के लिए, भक्ति करने के लिए ऐसी की आवश्यकता है। इसलिए हमने किसको पकड़ा है? ऐसी भक्ति वेदांत। और भक्ति वेदांत को जब हम समझते हैं तो व्यक्ति भक्ति सिद्धांत को समझ सकता है, हाँ ऐसे नहीं। इसलिए किसी भी आचार्य को समझने के लिए जंप मारना नहीं है, भक्तों के ऊपर से जंप मार के नहीं जाना है, उसको पकड़ता हूं नहीं, उनकी कृपा से हम उस सीक्वेंस में उस परंपरा के आचार्य को समझ सकते हैं, वर्तमान आचार्य की कृपा से। और भक्ति सिद्धांत या फिर भक्ति विनोद को समझना है तो किसको समझना पड़ेगा? भक्ति सिद्धांत सरस्वती को। हाँ, ये दोनों आपस में बहुत फाइट करते थे। कौन? पिता पुत्र है वो, कौन बताइए? भक्ति सिद्धांत और भक्ति विनोद, ये दोनों एक चीज में लड़ाई करते थे। वो कहते थे, भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे, कलयुग में भक्ति करने के लिए गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। वो फिक्स थे, बहुत चिल्ला चिल्ला के भक्ति विनोद ठाकुर बोलते थे। भक्ति सिद्धांत कहते उनको डांटते थे, कहते सारे ग्रह मेदी हैं, कलयुग में गृहस्थ आश्रम से नहीं समझा जा सकता। वो ये चिल्लाते थे कि सन्यास ब्रह्मचारी। हाँ, प्रभुपाद ने फिर दोनों को मिला दिया। हाँ, प्रभुपाद ने कहा किसी भी आश्रम में रहो, भगवान की शरण ग्रहण करो। तो बहुत सारे कथन है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के। बल्कि जब हम किसी भक्त के बारे में या महान आचार्य के बारे में सीखते हैं, समझते हैं, सुनना चाहते हैं, सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि वो महान भक्त, वो महान आचार्य हमारे जैसा कर्मों से बंधा हुआ नहीं है। जब तक ये नहीं हमारे समझ में आता, तब तक उनका जीवन और उनके जीवन की घटनाएं हमें साधारण लगेगी। हाँ, इसलिए भगवान कुछ, भगवान कहते जन्म कर्म च मे दिव्यम, उसी प्रकार से भगवान के जो महान शुद्ध भक्त होते हैं उनके जन्म कर्म भी क्या होते हैं? दिव्य होते हैं। इस भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता। भौतिक आंखों से हम यदि किसी भक्त का आकलन करते हैं तो हम उसको समझ नहीं सकते। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे आचार्य थे कि किसी साधु ने आज तक जूते नहीं पहने थे। पहला ऐसा साधु था वो किसमें? हाँ, टाई सूट बूट डाल के प्रचार करने के लिए निकलता था। उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को फैलाने के लिए हमें जो भी करना पड़े उसको करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। वो एक बार पटना गए थे, वहां एक हाथी को देखा। उन्होंने कहा अरे इतना पावरफुल प्राणी है, ये तो कृष्ण की सेवा में होना चाहिए। हाँ, या ऐसा कहा वो जा रहा है रोड में, कोई एक महा क्या कहते महावत, उस महावत बैठा हुआ है और बस रोड में केले खाते हुए जा रहा है, पैसे इकट्ठा करते हुए। हाँ, कहते नहीं नहीं ये पावरफुल है, इसको किसकी सेवा में होने चाहिए? कृष्ण की सेवा में। पकड़ के लाया हाथी अपने आश्रम में। उनका जो आश्रम था बाग बाजार मठ कोलकाता में, दो तीन कारें थी उस समय। उनका जन्म 1874 में हुआ था, 1874 में शायद। हाँ, 1874 6 फरवरी सुबह 3:30 बजे, नहीं शाम को 3:30 बजे। तो जब ऐसा उन्होंने वो उनका जो मठ था कोलकाता में, तो उसमें ऊंट थे, ऊंट को भी रखा था किसकी सेवा में? अभी तो हम टू व्हीलर्स रखते हैं ना, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, बहुत सारे व्हीलर्स। तो वहां तो उस समय कहां था, उस समय में अंग्रेजों के समय में तो लोग बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी थी। और ऐसा वर्णन आता है कैमल थे, ऊंट थे, हाथी थे, घोड़े थे। बल्कि कलकत्ता में ऐसे सुंदर और पावरफुल घोड़े कहां भी नहीं थे। लोग घोड़े देखने के लिए वहां मठ में आते थे और लोग कहते थे क्या घोड़े हैं ये लोग, शायद ये मंदिर के भक्त इनको मालपुआ खिलाते हैं, ऐसा सोचते थे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार करने के लिए हमें जहां जाना पड़े, चाहे हाथी के ऊपर ऊंट के ऊपर किसके ऊपर बैठ के जाना पड़े तो भी चले जाना चाहिए, निकल जाओ महाप्रभु का संदेश देने के लिए। हाँ, क्योंकि इस संसार की हर चीज कृष्ण के लिए है, कृष्ण की सेवा के लिए बनी हुई है। तो ऐसा उनका एटीट्यूड था, उनकी भावना थी। हाँ, ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महान आचार्य थे इस संप्रदाय के। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कुछ घटनाएं छोटी छोटी मैं वर्णन करता हूँ। उनका जो प्राकट्य है, भक्ति सिद्धांत महाराज को समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि वो हमसे बहुत नजदीक है ना, प्रभुपाद के गुरु महाराज है, तो हम इजीली समझ सकते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो जन्म है जगन्नाथपुरी में हुआ था, क्योंकि उनके जो पिता हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, वो मैजिस्ट्रेट थे उस समय अंग्रेजों के समय में, और वो अपना जो ऑफिस ऑफिशियल जो कार्य है वो जगन्नाथपुरी में करते थे, कोर्ट आदि का जो भी उनका कार्यभार था। तो ऐसे कुछ साल वो जगन्नाथपुरी में थे भक्ति विनोद ठाकुर, और वो मग्न हो गए। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं अपने स्वलिखित जीवनी, उन्होंने अपना खुद का जीवन चरित्र लिखा है, उसमें वो लिखते हैं कि मेरे जीवन में सबसे अच्छा समय, सबसे अच्छे दिन कहाँ थे, तो वो जगन्नाथपुरी के थे। क्यों? क्योंकि वहां मुझे सबसे अधिक भक्तों का संग मिला था, उनसे सीखने को मिला था। वहां ही उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, हरिनाम चिंतामणि, गीतमाला आदि कई सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे थे वहां भक्ति विनोद ठाकुर ने। तो ऐसे वो बिजी हो गए अपने ऑफिस कार्य करने में, भक्तों का संग करने में। तो एक दिन एक रात्रि में भगवान जगन्नाथ स्वप्न में आते हैं, कहते भक्ति विनोद तुम्हें मैंने इसलिए बुलाया है जगन्नाथपुरी में कि अपना ऑफिस का कार्य करते रहो, तुम्हें चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार करना है, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन की स्थापना करनी है, ऐसा सपने में कहा। ये उठ गए भक्ति विनोद ठाकुर, उठ गए तो अभी कहते मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है। एक भक्त का वो होता है विनम्रता का भाव, वो कहता है मैं तो योग्य नहीं हूं, लेकिन सेवा आती है तो वो करता है। ऐसे नहीं कि सेवा नहीं करने के लिए भागने के लिए हम बोलते प्रभु जी ना मैं बहुत नीच हूं, अधम हूं, पतित हूं, नहीं हो सकता मुझसे, ये सब सेवा से भागने के चक्कर है। चाहे मैं अधम हूं पतित हूं, उन्नत तभी हो सकता है जब हम क्या करते हैं, सेवा आदि में लगते हैं। चाहे हमें कोई योग्यता हो या ना हो, भगवान योग्यताएं देते हैं, भगवान शक्ति प्रदान करते हैं। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर वो भगवान जगन्नाथ के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि मुझ में तो योग्यता और सामर्थ्य नहीं है, आप एक ऐसा पुत्र मुझे दे दो। जिनको उन्होंने कहा रे ऑफ विष्णु, विष्णु की किरण दे दो आप मुझे, एक ऐसा पुत्र जो इतना शक्तिशाली हो कि ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन, उसकी वो स्थापना कर पाए। तो ऐसी प्रार्थना उन्होंने किनसे की थी, भगवान जगन्नाथ से। तो भगवान जगन्नाथ से उन्होंने जब ये प्रार्थना की तो भक्ति विनोद ठाकुर के कई सारे पुत्र थे, उनमें ये छठा पुत्र था भक्ति सिद्धांत सरस्वती। इनका नाम क्या था पहले, बिमला प्रसाद। कौन सा प्रसाद? बिमला प्रसाद। क्यों बिमला प्रसाद? क्योंकि भगवान जगन्नाथ से जो भी चीज आती है, उनका जो प्रसाद भी मिलता है जगन्नाथ जी का, भगवान जगन्नाथ को पुरी में जो भोग लगता है भगवान ग्रहण करते हैं, उनके बाद वो विमला देवी को ऑफर होता है। विमला देवी मीन्स पार्वती देवी, और फिर वो सारे लोगों में बटा जाता है आनंद बाजार में। इसलिए भगवान जगन्नाथ से ही उन्हें ये पुत्र प्राप्त हुआ था, जिसके कारण उनका नाम क्या रखा, विमला प्रसाद। तो पार्वती देवी का दूसरा नाम विमला देवी है वहां, तो विमला प्रसाद ये उनका नामकरण उन्होंने किया। और जब ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जन्म लिए, तो जिस प्रकार से ब्राह्मण का जनेऊ होता है शरीर से लपटा हुआ, उसी प्रकार से उनका जो जन्म लेते तो माँ से कनेक्टेड रहता ना, क्या कहते उसको, नाल, क्या जो भी समझ गया आप ना, तो वो जो नाल या नाड़ी जो भी है वो उनके पूरे बॉडी में ऐसे लपेटा हुआ था ब्राह्मण की तरह, और वो ऐसे थे ही ब्राह्मण के गुणों से भरे हुए थे। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जगन्नाथपुरी में प्राकट्य हुआ था। और प्राकट होने के बाद एक जो भविष्यवेत्ता था एस्ट्रोलॉजर, उसने कहा था कि ये व्यक्ति, ये जो बालक है, आगे जाकर एक महापुरुष बनेगा, और उनके शरीर में 32 महापुरुष के लक्षण थे। चैतन्य चरितामृत आप पढ़ते हैं, आदि लीला में वो 32 लक्षण बताए गए हैं महापुरुष के, अलग अलग लक्षण, उनके हैंड कैसे होते हैं, अजानुलंबित भुजाएं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के हाथ कहां तक थे? घुटनों तक, ऐसे पावरफुल आचार्य थे। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब 5 महीने के हुए थे, तो उस समय जगन्नाथ जी की रथ यात्रा थी। तो भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा बलराम के साथ बाहर आए, और आकर इनका जो घर था भक्ति सिद्धांत महाराज के पिता का, भक्ति विनोद ठाकुर का, वो मेन रोड पर था जहां से जगन्नाथ गुजरते हैं, जिसको ग्रैंड रोड कहते हैं वहां, या बड़ा दांड कहते हैं। तो वहां से जब रथ जा रहा था जगन्नाथ का, तो जगन्नाथ का रथ उनके घर के सामने खड़ा हो गया, बिल्कुल उनके दहलीज के पास। जगन्नाथ जी हिले नहीं। क्यों नहीं भगवान जगन्नाथ हिले? उस दिन गए ही नहीं, वो रथ यात्रा वहां ही एंड हो गई। भगवान जगन्नाथ किसको देखना चाहते थे? अपने इस भक्त को देखना चाहते थे। कितने महीने का था वो बच्चा? 5 महीने का। तो उनकी जो भगवती देवी, शायद उनकी मदर का नाम था, वो उनकी माता उनको लेके आती है और सीधा मां रथ के ऊपर चढ़ती है। मैजिस्ट्रेट की पत्नी है, किसकी हिम्मत है रोकने की? कोई नहीं रोकेगा। वो सीधा बालक को लेके गए जगन्नाथ के सामने, ऐसे रखा नीचे रथ के ऊपर। तो भगवान जगन्नाथ की जो माला है टूट जाती है गले से, और टूटकर किसके ऊपर पड़ती है? इस बालक के ऊपर, भक्ति सिद्धांत बिमला प्रसाद जिनका नाम था। तो ऐसे ये सारे लक्षण है, किसके लक्षण है? नित्य सिद्ध व्यक्ति के। नित्य सिद्ध व्यक्ति वो है कि जो कभी भी भगवान को भूलता नहीं है या नहीं भूला हो। इसलिए प्रभुपाद भी साधारण व्यक्ति नहीं है, नित्य सिद्ध है। प्रभुपाद एक जगह कहते हैं, एक प्रवचन में कहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा एक भी क्षण नहीं था कि जिस समय में कृष्ण को भूला हो। अभी हमारे जीवन में कितने क्षण हैं हम कृष्ण को याद करते हैं? उल्टा है। वहां भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कहते हैं मेरे जीवन में ऐसा एक भी क्षण नहीं था। वो कहते कि मैं इतना फॉर्चुनेट था, मेरे गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती के समान ही। कहते कि उनको भी बचपन से ही भगवत भक्ति करने का मौका मिला था, और मुझे भी घर में भगवत भक्ति करने का मौका मिला है। तो ये गृहस्थ का कितना बड़ा कर्तव्य है, केवल बच्चों को जन्म देना ये कोई कर्तव्य नहीं है। हाँ, बल्कि असली कर्तव्य, असली ड्यूटी क्या है एक माता पिता की? आपने बच्चों को भगवान का भक्त बनाना। अभी हम बच्चा जन्म लेने से पहले सोचते हैं डॉक्टर बनाएंगे इसको, इंजीनियर बनाएंगे। अभी बच्चा अंदर ही है, पेट में ही है, तभी माता पिता भविष्यवाणी करते रहते हैं उसकी। लेकिन कभी सोचते नहीं है कि ये बच्चा जन्म लेगा इसको क्या बनाना है? मुझे भक्त बनाना है, ये भावना नहीं है। हाँ, तो ये एटीट्यूड होना चाहिए, वो असली माता पिता है। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अन्न प्राशन होता है, अन्न प्राशन मीन्स पहली बार खिलाते हैं ना, तो बच्चा कुछ नहीं खाता। सबसे पहले कुछ खाता है तो क्या खाता है? जगन्नाथ जी का प्रसाद। हाँ, और फिर बचपन में एक क्रिया होती है जिससे ये दर्शाया जाता है या उससे समझा जाता है कि आगे चलकर ये बच्चे का झुकाव किस तरफ होगा। हाँ, तो माता पिता जो छोटा बालक होता है तो उसको एक कोने में वहां बिठा देते हैं, और इधर बहुत सारी वस्तुएं रखते हैं। आजकल तो मोबाइल भी रख सकते हैं, आईपैड भी रख सकते हैं, फिर भागवत भी रखते हैं, गीता, ऐसे कई ग्रंथ। मैं मायापुर में तो कई बार देखा भक्तों के, जो भक्त है उनके अपने बच्चों को लेके आते हैं मंदिर, अब वहां से रखते हैं और फिर वो बच्चों को छोड़ते हैं वहां से। तो बच्चे का स्वाभाविक झुकाव पता चल जाता है। तो कुछ बच्चा मॉडर्न है तो जाके फोन को ही पकड़ेगा। हाँ, तो लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत 5 महीने के थे या कुछ थोड़े से बड़े, तो जब ऐसे गए रहते हुए जाकर किसको पकड़ा, श्रीमद भागवतम को, और ऐसे गोद में लगाया, ऐसे पकड़ा। चैतन्य महाप्रभु ने भी जब जन्म ग्रहण किया था नवद्वीप मायापुर में, तो उनका भी ऐसे परीक्षा लिया था सची माता और जगन्नाथ मिश्र ने, तो उन्होंने भी क्या कर वैसे ही पकड़ा था, श्रीमद भागवतम को पकड़ा था। तो ऐसे कई सारे भक्तों के जीवन में आता है। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब 4 साल के हुए, क्योंकि उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर एक महान भगवत भक्त थे, जिनका संस्कार अपने परिवार के ऊपर था, तो उन्होंने एक बार मैंगोज लेके आए, आम लेके आए ऑफिस से आते आते, आम लाके टेबल में रखे, तो ये छोटा सा बालक अभी 4 साल का था, डायरेक्ट एक आम उठाया और खाने लगा। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, अरे पुत्र भगवान को अर्पित किए बिना खा लिया। तो उस छोटे से 4 साल के बालक ने प्रतिज्ञा ली, जैसे भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी ना, याद है आपको भीष्म प्रतिज्ञा, तो उसी प्रकार से इस छोटे से 4 साल के बालक ने प्रतिज्ञा ली। हाँ, इसको कहते दृढ़ प्रतिज्ञा या भजते मां दृढ़ व्रता, गीता में कृष्ण कहते हैं। तो ऐसी प्रतिज्ञा ली कि मैं आज से अपने जीवन में कभी आम नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैंने एक महान अपराध किया है, कृष्ण को अर्पित किए बिना मैंने आम खाए हैं। किसको आनंद प्रदान करने के लिए, जीवा का अग्रभाग, जीवा के बाकी भाग को कुछ पता नहीं चलता टेस्ट कैसे है, खट्टा मीठा रसीला, हाँ जो अग्रभाग है ना वो हमें नचाता है, वो घुमाता है हमें, पूरे चक्कर काटने लगाता है। इधर है कोई फेमस मार्केट, घर से हमेशा भागता है मन, जाओ गोलगप्पे खाने के लिए और क्या क्या होता है हमें तो पता ही नहीं, मुझे तो पता नहीं मैं अधिकतर। तो वैसे ही भक्ति सिद्धांत छोटा सा बालक था विमला प्रसाद, उन्होंने कहा मैं आजीवन कभी भी आम नहीं खाऊंगा। इतने बड़े आचार्य बने, 64 गौड़िया मठों की स्थापना की, हजारों शिष्य बनाए, उनके शिष्यगण उनके लिए लेके आते थे क्या मैंगोज, वो कहते मैं इसको ग्रहण नहीं करूंगा क्योंकि मैं कृष्ण का अपराधी हूँ। किसका अपराधी हो, एक्चुअली ये है एटीट्यूड, हमारी ये भावना है, और इसी कारण से वो इतने दृढ़ थे भगवत भक्ति आदि में। वो इसे सिखाते हैं कि हमें भगवत भक्ति में उन्नति के लिए जो अनुकूल चीजें हैं, फेवरेबल है, उसको स्वीकार करना चाहिए, और जो भक्ति के लिए बाधक है, प्रतिकूल चीजें हैं, उसको किसी भी हालत में त्याग देना चाहिए, चाहे हम उससे बिना रह नहीं पाए। कभी कभी ऐसे होता है ना, भक्ति में करते हैं लेकिन कुछ ऐसी आसक्तियां होती है हृदय में, वो छोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है, छोड़े तो रोना आता है। हाँ, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि ये मेरे दुख का कारण बनेगा, ये जो वस्तु है व्यक्ति है मुझे त्यागना होगा। तो प्रतिकूलस्य वर्जनम, शरणागति के 6 लक्षण हैं, उसमें से हमारे लिए अभी तो 2 ही ठीक है, बाकी तो हमारे पल्ले नहीं पड़ेंगे, लेकिन ये 2 कौन से हमारे लिए है, आनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो भी भक्ति के लिए अनुकूल है वो मुझे स्वीकार करते रहना है, उसको पकड़ते जाना है, पकड़ते जाना है, भक्तों का संग, शास्त्रों का अध्ययन, ऐसे कई सारी चीजें हैं। और जो भी मुझे भक्ति से दूर ले जाते हैं, मेरे मन को चंचल करते हैं, भगवान, भगवान के भक्त, भक्तों का संग, सेवा, जो मुझसे दूर करते हैं, ऐसा व्यक्ति, वस्तु, वातावरण, स्थान सबका त्याग करना है। हाँ, मुझे उनसे दूर रहना है, डिस्टेंस। वो ट्रक के पीछे लिखा होता है ना, क्या लिखा होता है, मैं जब पढ़ता हूँ तो हमेशा 2 चीजें याद आती है, एक तो नहीं बताऊंगा आपको लेकिन यार एक है आपके लिए है, हाँ, कि कीप डिस्टेंस मीन्स दूरी बनाए रखो, प्रतिकूल चीजों से क्या करो, दूरी रहो। जो भक्ति से हमें कृष्ण से जो दूर हमारी टांग खींचते है ना, ऐसी कई सारी चीजें हैं, उनसे दूर रहो। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत महाराज 4 साल की आयु में ही ये सब सिखाते हैं हमें। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत छोटे ही थे, 5 साल के ही थे, तो बचपन में ही उनके पिता श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको जप करने के लिए दीक्षित किया था नरसिंह मंत्र में, और वो जो कुर्म शिला थी भगवान कुर्म की, उस शिला का पूजन ये जो छोटे से बालक है वो किया करते थे कलकत्ता में, जब भक्ति विनोद ठाकुर ने अपना घर बनाया था, उस घर का नाम रखा था भक्ति भवन। क्या नाम रखा था? हाँ, भक्ति भवन, कितना अच्छा नाम है। हाँ, उसमें ये जो छोटे से बालक है वो भजन किया करते थे। अरे भक्ति सिद्धांत सरस्वती की एक खासियत थी कि वो एक बार कोई किताब पढ़े ना फिर से नहीं पढ़ते थे। हमें भी ऐसे लगता है, गीता एक बार पढ़ ली प्रभु जी अभी नहीं फिर से नहीं पढ़ना है, हाँ बस बहुत हो गया, गीता पढ़ ली पूरी पढ़ ली, कितना आनंदित हो जाते हैं। हाँ ऐसे की कुछ शेर मार के आए हो आप, हाँ बल्कि बारंबार पढ़ना चाहिए। तो यहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो इतने पावरफुल आचार्य थे, उनकी मेमोरी जिनको उनको श्रुतिधर भी कहा जाता था। श्रुतिधर मीन्स एक बार वो सुनते थे वो हमेशा के लिए याद रहता था। 50 साल के बाद उनको पूछोगे कि आपने वो किताब पढ़ा था उसका वो पेज नंबर पैराग्राफ में बताओ क्या लिखा है, भक्ति सिद्धांत महाराज ऐसे बोल देते थे। इसलिए वो कहते थे मैं कोई पैराग्राफ या लाइन नहीं पढ़ता, मैं पूरा बुक एक साथ पढ़ लेता, ऐसे देखते बुक को, जैसे कहते ना एक्सरे स्कैन, हाँ स्कैन कर लेते थे। कहते व्यक्ति मेरे सामने खड़ा हो जाता है उसको मैं स्कैन कर लेता हूँ, भक्ति सिद्धांत महाराज ऐसे पावरफुल थे, उनसे कोई बच नहीं सकता था। वैसे गुरु होते हैं, शिष्य कितना भी छुपाते रहे अपनी सारी कमियों को, हाँ लेकिन गुरु सामने होते हैं गुरु उसको पहचान जाते हैं, हाँ कितना ढोंग कर रहा है कितना मुझसे छुपा रहा है। तो आध्यात्मिक गुरु का मतलब वो मशीन है, एक्सरे मशीन या स्कैन करते हैं। तो वैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत पावरफुल थे, और वो किसी ढोंगी बाबा जी को ज्यादा एंटरटेन नहीं करते थे। जगन्नाथपुरी में जब रहते थे तो उनके घर में उस समय जगन्नाथपुरी में सबसे प्रसिद्ध एक बाबा जी थे, वो आया करते थे, सारे हजारों लोग उनको प्रणाम करते थे, लेकिन एक ही व्यक्ति प्रणाम नहीं करता था, कौन? भक्ति सिद्धांत। ये छोटे से थे तो एक दिन उन्होंने पूछा, अरे भक्ति विनोद सारे लोग मुझे प्रणाम करते हैं, इतना बड़ा आचार्य हूं मैं, साधु हूं, ये तुम्हारा बच्चा मुझे प्रणाम नहीं करता, तुम्हारा बेटा ये जो भक्ति सिद्धांत विमला प्रसाद। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि वो सहजिया व्यक्ति को प्रणाम नहीं करता। हाँ सहजिया का मतलब है जो भजन को सहज ले लेता है, या फिर उसको और एक भाषा में बोला गया है कि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहते हैं कि ये सहजिया लोग शास्त्रों को स्वीकार नहीं करते, शास्त्रों की बातों को अपने मनमाने ढंग से भगवान की आराधना करते हैं, हाँ एक प्रकार से ये उनका ढोंग है। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब 7 साल के थे तो उन्होंने पूरी भगवद गीता को कंठस्थ कर लिया था। कितने साल के? आराम 70 साल के हैं, 7 श्लोक याद नहीं होते हमसे, हाँ यहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती। अल्टीमेटली ये सारा निर्भर है आध्यात्मिक जीवन कि मैं कृष्ण प्राप्ति के लिए कितना लालायित हूं, किस पर निर्भर है, मैं कृष्ण प्राप्ति के लिए कितना लालायित हूं। अभी हम कितने लालायित रहते पैसा कमाने के लिए, है ना, आंख खुलते ही सबसे पहले किसका दर्शन होता है आंखों के सामने, इनविजिबल दर्शन, या उठते किसी चीज की याद आती है तो किस चीज की याद आती है, एक तो धन की याद आती है, बैंक बैलेंस बहुत कम है आजकल, बार बार चेक करते हैं, आजकल तो मैसेज भी आते हैं, अब ऑनलाइन पेमेंट करते तो क्या आपको मैसेज आ जाते हैं कितना बैलेंस है आपका, हाँ तो ये चिंत लगा रहता है, लालायित है, उसके लिए जितने उग्र कर्म करने पड़े वो करने के लिए तैयार है। तो वैसे ही भगवत भक्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए हमें क्या होना होगा, लालायित होना होगा, और जो जितना लालायित है वो उतना उन्नत भक्त है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भगवान को खरीदने के लिए एक ही चीज है, तत्र लवल्यम मूल्यम एकलम, एक ही मूल्य है, क्या, लालसा, ग्रीड, भगवान को जानने का जो ग्रीड है, लालच, वो हमारे अंदर होना होगा। और वो आता है जिन भक्तों में ऐसा ग्रीड है, लालच है भगवत प्राप्ति का, उनका संग करने से, ऐसे शुद्ध भक्तों का। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर हाँ इतने पावरफुल थे, क्योंकि वो जो हरिनाम उनकी जिह्वा से निकलता था वो कोई साधारण हरिनाम नहीं था, शुद्ध नाम। अभी तो हम नाम लेते बहुत परेशान होते हुए कृष्ण परेशान हो जाते होंगे, हाँ कई बार तो भक्त ऐसा ऐसा जोर जोर से चिल्लाते हैं, हाँ कृष्ण को पता नहीं सुनने में अच्छा लगता होगा या नहीं। आज मैं किसी को कह रहा था जैसे हम पूरा कृष्ण कृष्ण कुछ कुछ चिल्लाते रहते ना ऐसे बहुत ज्यादा, तो भगवान को पता नहीं सुनना आनंददायी महसूस होता होगा या नहीं। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जब भक्ति विनोद ठाकुर अपने पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती को मायापुर लेके गए कि पुत्र चलो हम मायापुर की यात्रा में जाते हैं। कितने लोग जा रहे हैं मायापुर? अच्छा बहुत ज्यादा जा रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं। तो मायापुर वो अपने पुत्र को लेके जा रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो हम मायापुर जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु के लीला स्थलियों को देखते हैं। तो ऐसे जब जा रहे थे तो रास्ते में एक कुलीन ग्राम है, कुलीन ग्राम वहां जाकर वो देखा कि रात हो गई तो रहने के लिए कोई स्थान नहीं था, तो वो जाते जाते एक गांव के बाहर एक मंदिर था ऐसा टूटा सा, और उसके पेड़ के नीचे रात को रहे और सुबह जब हुआ तो उठ के गांव में प्रवेश किया उन्होंने, तो गांव वालों ने कहा अरे आप दोनों जीवित कैसे, पूरी रात्रि कहाँ थे आप? तो उन्होंने कहा हम तो वो एक टूटा वो जो मंदिर है वहां थे, और वहां पेड़ के नीचे रात गुजारी हमने, आने के लिए थोड़ा लंबा था गांव। तो उन्होंने कहा कैसे? वहां तो ब्रह्म राक्षस रहता है। कौन रहता है? ब्रह्म राक्षस, भूत पिशाच आदि। हाँ आप कैसे आ गए हो? उन्होंने कहा भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि उसने उत्पात तो मचाया था लेकिन हम जोर जोर से क्या कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहते हैं। वो पत्थर आदि तो फेंक रहा था लेकिन जैसे हमने उच्च हरि नाम किया तो उससे क्या हो गया, वो जो ब्रह्म राक्षस है वो एक पुजारी था मंदिर का, लेकिन बहुत सारे पाप कर्म भी करता था जिसके कारण वो क्या बना था, भूत बना था ब्रह्म राक्षस। उसका उद्धार किसके हरि नाम से हुआ था? भक्ति विनोद ठाकुर। इसलिए जब हम जप करते हैं किसके लिए? अपने लिए, अपनी शुद्धि के लिए। लेकिन जब उच्च स्वर से हरि नाम करते हैं दूसरों का भला करने के लिए, दूसरों के हित के लिए। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत और भक्ति विनोद ठाकुर पावरफुल थे, जिनके हरि नाम से ऐसे पापी जीव भी भगवत प्राप्ति कर लेने में सक्षम हो जाते हैं। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस समय कॉलेज में पढ़ा करते थे 1892 में। तो जब कॉलेज में गए तो लेकिन कॉलेज की किताबें कम पढ़ते थे, लेकिन छुप छुप के किताबें पढ़ते थे, किसकी? नरोत्तम दास ठाकुर और ये जो हमारी परंपरा के षड गोस्वामी उनकी किताबें। जब उनका पढ़ाई का जो टेबल होता था उसमें से स्कूल की किताबों के नीचे भगवद गीता और ये सब पढ़ते थे ताकि किसको पता ना चले। हाँ अभी तो उल्टा है, तो वो पढ़ते थे और अपने ड्रॉवर में हमेशा नरोत्तम दास ठाकुर की दो किताबों को छुपा के रखते थे, प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका। तो होमवर्क करने का बहाने से वो इन आचार्यों के सारे ग्रंथ पढ़ लिए उन्होंने। तो हमें पढ़ने के लिए बहाने नहीं मारने चाहिए। प्रभुपाद के ऐसे कई सारे शिष्य हैं जिन्होंने जब ज्वाइन किया अपने युवा अवस्था में इस आंदोलन को, उस समय तो बहुत सारी सेवाएं थी भक्तों के पास, हाँ इतना सारा जिम्मेदारियां थी सेवाएं थी, बेचारे उनको पढ़ने के लिए भी समय नहीं था। भक्ति तीर्थ स्वामी एक प्रभुपाद के अफ्रीकन शिष्य थे, वो एक लिखते हैं, वो कहते हैं कि जब मैं ज्वाइन किया तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का एक वैन था, उसमें हम जाते थे बाहर, तो कई महीने बाहर ही होते थे, और उसी वैन में पूरे दिन पुस्तक वितरण करते थे और रात को उसी वैन में सो जाते थे। वो कहते मैंने सारी किताबें उसी वैन में पढ़ी है, सब करते हुए रात को जग जग के, पूरा भागवत चैतन्य चरितम जितने ग्रंथ है राधानाथ स्वामी कहते हैं कि उनकी सेवा न्यू वृंदावन में थी, गायों का गोबर उठाना, उनका दूध निकालना और कुकिंग करना, बहुत सारी सेवाएं थी। कहते मेरे पास टाइम नहीं होता था, मैं वो कुकिंग हो रही है तो किताब हाथ में लेकर चलते चलते ग्रंथ पढ़ लिए सारे। तो यहां हम हमेशा बहाने ढूंढते हैं ग्रंथों को न पढ़ने के, इसलिए ग्रंथों को पढ़ना भक्तिमय जीवन में परम आवश्यक है। उनको पढ़े बिना कैसे हम भगवत भक्ति को समझ सकते हैं और कैसे हमारे हृदय के जो शंकाएं हैं, अनर्ताज हैं, उनसे हम मुक्त हो सकते हैं। हाँ, वो इसलिए बहुत आवश्यक है। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, आजीवन ब्रह्मचारी। वो कहते हैं कि मैं अपने कॉलेज दिन में, उन्होंने एक छोटा सा ग्रुप बनाया था कॉलेज में, जिसको उन्होंने नाम दिया था ऑगस्ट असेंबली या चिर कुमार सभा। चिर मीन्स हमेशा के लिए, कुमार मीन्स यू कुमार होता है ना, शादी से पूर्व, क्या कहते हैं, युवा। तो ऐसे उन्होंने एक छोटा सा ग्रुप बनाया था और उन सबने, युवाओं ने सबने प्रतिज्ञा की थी कि हम कुमार ही बने रहेंगे आजीवन। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि सबने थोड़े दिनों के बाद क्या कर लिया, शादी कर ली, मैं ही अकेला रह गया, वो कहते। हाँ, तो ऐसे अकेले थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती, जिन्होंने आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार करने के लिए एक संस्था की स्थापना की थी, जिसका नाम था गौड़िया मठ। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर युवा हुए, लगभग उनकी आयु 31 साल के थे, तो उससे पहले उनके जो पिता थे भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने मायापुर के पास गोद्रुम द्वीप में एक घर बनाया जिसका नाम था स्वानंद सुखद कुंज। तो वहां भक्ति विनोद ठाकुर ने नया नया घर बनाया था, तो वहां 30 साल तक वृंदावन में भजन करके गौर किशोरदास बाबा जी महाराज आए थे घूमते हुए नवद्वीप, और पहली बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनको देखा, और जब देखा तो उन्होंने सोचा ये तो महान वैष्णव है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि हे भक्ति सिद्धांत विमला प्रसाद, तुम क्या करो, इनसे दीक्षा लो, गौर किशोरदास बाबा जी। और गौर किशोरदास बाबा जी ऐसे वैष्णव थे कि जो अपना सिग्नेचर करना भी नहीं जानते थे, अनपढ़ थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत इतने पढ़े लिखे थे, विद्वान, उस समय के सबसे बड़े विद्वान। उनको किसकी शरण ग्रहण करने के लिए बोला था, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की। भौतिक रूप से वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन भगवत भक्ति से क्या थे, वो बहुत अधिक उन्नत थे। सारे शास्त्रों का निचोड़ उनके हृदय में और उनके वाणी में था। तो भक्ति के लिए ये सब योग्यता नहीं है कि कौन भौतिक रूप से कितना क्वालिफाइड है, कितना पढ़ा लिखा है, उससे मायने नहीं रखता। उसका हृदय कितना कृष्ण के लिए शरणागत है। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने पिता की आज्ञा से गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास जाते हैं और उनको याचना करते कि आप मुझे ना शिष्य बनाओ, दीक्षा दो, बिना दीक्षा लिए मेरा जीवन एक पशु के भांति है। और वास्तव में जब तक व्यक्ति दीक्षा ग्रहण नहीं करता, मनुष्य जीवन प्राप्त करके आध्यात्मिक गुरु की शरण नहीं ग्रहण करता, तब तक उस व्यक्ति को पशु ही कहा गया है शास्त्रों में, पशु के समान है वो व्यक्ति। तो ऐसे वो जाते हैं, उनके चरणों में गिर पड़ते और कहते कि आप मुझे शिष्य स्वीकार कीजिए। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहते हैं कि मैंने एक को दीक्षा दी थी, वो धोखा दे के चला गया, किसी को दीक्षा नहीं दी थी उन्होंने, लेकिन वैसे उनकी परीक्षा लेने के लिए। कहते एक को शिष्य बनाया था लेकिन वो धोखा दे के भाग गया, कहते मैं दूंगा नहीं अभी किसी को दीक्षा। तो ये पूरा पीछे लग गए उनके हाथ धोके, उन्होंने कहा मुझे शिष्य स्वीकार कीजिए। तो गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज कहते रुको, मैं चैतन्य महाप्रभु को पूछूंगा, कल पूछ के बताऊंगा कि तुम्हें शिष्य स्वीकार करूंगा या नहीं। फिर दूसरी बार जब मिले तो भक्ति सिद्धांत महाराज दंडवत प्रणाम किया और उन्होंने पूछा, बाबा जी महाराज आपने पूछा चैतन्य महाप्रभु को? अरे अरे मैं भूल गया। तो ऐसे लगभग 9-10 बार हो गया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा
कि अभी यदि आप मुझे शरण ग्रहण शरण नहीं देंगे, आपके चरणों का आश्रय नहीं देंगे, तो मैं क्या करूंगा, अपने शरीर को त्याग दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा, शरीर किसी काम का नहीं है। यदि वो कृष्ण की सेवा में नहीं लग रहा है, आप जैसे वैष्णव की सेवा में नहीं लग रहा है, तो वो तैयार हो गए नदी में जंप मारने के लिए। तब गौर कृष्णदास जी महाराज ने कहा, नहीं रुको, मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं। 1901 में जनवरी में शायद उनको दीक्षा दी थी, उनका नाम रखा, पहले नाम क्या था, बिमला प्रसाद। तो इन्होंने और इनको ये नाम भक्ति सिद्धांत नाम मिला था, सिद्धांत सरस्वती भी नाम मिला था उनको, क्योंकि वो सूर्य सिद्धांत जो एस्ट्रोलॉजी का एक ग्रंथ है उसमें बहुत विद्वान थे। और फिर जब इन्होंने नया दीक्षा का नाम उनको मिला, वार्ष भानवी दयित दास, क्या नाम था, वार्ष भानवी दयित दास। वार्ष भानवी कौन है, राधा रानी, वृष भानु की पुत्री है ना। तो वार्ष भानवी दयित मीन्स जो प्रिय है, तो वार्ष भानवी के जो प्रिय है उनके दास। तो राधा रानी के प्रिय कौन है, कृष्ण है, तो उनके दास, ये नाम उनको मिला था। तो ऐसे अपने आध्यात्मिक गुरु की वो शरण ग्रहण करते हैं। और जब उनकी आयु 31 साल की हुई थी, समय तो हो गया, मैं तो आपको कूदते हुए बताते जा रहा हूं सारी चीजें। तो जब उनकी आयु 31 साल की हो गई तो उन्होंने एक व्रत लिया। कौन सा व्रत था, शतकोटि नाम यज्ञ। शतकोटि, रोज 3 लाख नामों का जप करते थे। कितने लाख, और हम कितने नामों का जप करते 16 माला में, 1700 समथिंग ना, कितना ऐसे कुछ है, 1728। कहा 3 लाख और कहा है, हाँ कहा 1728। तो 71 साल की आयु में उन्होंने व्रत लिया, शतकोटि नाम यज्ञ, मतलब कोटि के बाद क्या आता है, अरब या खरब, क्या आता है, 100 करोड़ सोते तो उसके बाद खरब, हाँ तो मतलब 100 करोड़ शतकोटि, तो 100 करोड़ नाम उन्होंने लेने थे। ये यज्ञ उन्होंने ये व्रत स्वीकारा था 31 साल की आयु में। और वो बैठे कहा, चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थल है मायापुर में, उसके सामने एक छोटा सा कुटिया बनाया घास का, और उसमें वो बैठ जाते थे सुबह से, और एक ही बार भोजन करते थे। और घास की कुटिया, चाहे बारिश आ जाए तो छाता रखते थे कुटिया के अंदर, उसको पकड़ते थे, लेकिन कंटिन्यू क्या बोलते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा उन्होंने 10 साल तक किया। कितने साल तक,
10 साल।
आप सोचो 16 माला हमें तो एक साल करना बड़ा तपस्या लगता है, 3 लाख नाम ऐसे उन्होंने लिए। और जब ये उनका ये भगवान के गुरु देखते थे, भक्ति गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, वो कहते थे, और उनके गुरु इनको प्रभु कह के पुकारते थे, क्या कह के, प्रभु, क्योंकि इतना गर्व था, एक ही शिष्य बनाया था उन्होंने बस। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, एक चंद्र तमोहंती नच तारा सहस्रशः, एक चंद्रमा सारे अंधकार को दूर करता है, हजारों तारों की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा, मुझे हजारों हजारों शिष्य नहीं चाहिए, हजारों हजारों अनुयायी नहीं चाहिए, एक ही ऐसा भक्त चाहिए जो चंद्रमा के समान हो, सारे लोगों के जीवन के अज्ञान के अंधकार को क्या कर पाए, दूर कर पाए। तो ऐसे प्रभुपाद भी सोचा करते थे या बोला करते थे। तो गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज ने देखा तो उन्होंने कहा, मेरे प्रभु भक्ति सिद्धांत को देख के तो मुझे रूप और रघुनाथ की याद आती है। किसकी, रूप गोस्वामी और रघुनाथ गोस्वामी का वैराग्य की याद आती है। रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी इतना ऐश्वर्य आदि था, सब चीजों को त्याग कर उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की थी वृंदावन में और जगन्नाथपुरी में। तो ऐसे वो सोचा करते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कुछ सालों के बाद देखते हैं कि उनके जो पिता हैं उस परंपरा के महान आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर भी अप्रकट हो गए, इस संसार से चले गए। उनके गुरु भी गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज चले गए। अभी वो सोचने लगे कि मैं अकेला हो गया हूं। अभी उन्होंने सोचा क्या करूं मैं। एक दिन ऐसे वो भजन कर रहे थे गंगा के किनारे, जप कर रहे थे, तो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का एक पेज पन्ना ऐसे हवा से उड़ते हुए आकर उनके गोद में ऐसे लगा, पांव घुटने के पास। उन्होंने ऐसे देखा, अरे तो उसमें सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु जो उपदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं, उसका वर्णन था। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को ऑर्डर दिया था कि तुम वृंदावन में जाओ, लीला स्थलियों को खोजो, वैष्णव आचरण के ऊपर ग्रंथ लिखो और भक्त बनाओ, विग्रहों की स्थापना करो। ऐसे चार आदेश दिए थे। हाँ, तो ये देखकर भक्ति सिद्धांत कहते ये चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है मेरे लिए, और वो सोचते हैं कि अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो उस रात्रि में जब सोए तो उस रात्रि में सारी परंपरा उनके स्वप्न में आ जाती है और पंच तत्व भी आते हैं। विशेष रूप से गौर कृष्णदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी आदि उन्हें कहते कि हे भक्ति सिद्धांत उठो, निकलो बाहर, प्रचार करो। भक्ति सिद्धांत सपने में उनको कहते हैं, मेरे पास ना धन है, मेरे पास ना कॉन्टेक्ट्स हैं, सपोर्ट नहीं है किसी का, मैं अकेला हूं, कैसे मैं जाऊं प्रचार करूं। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर आदि सारे आचार्य कहते हैं, तुम निकलो प्रचार शुरू करो, सारा सपोर्ट सारा धन तुम्हारे चरणों में आ जाएगा। तुम क्या करो, निकलो बाहर और कृष्ण का गुणगान करना शुरू करो। तो भक्ति सिद्धांत महाराज फिर क्या करते हैं, निकलते हैं। और फिर एक एक दिन गौर पूर्णिमा का दिन था, उसी दिन वो संन्यास ग्रहण करते हैं। आपने वो देखते हैं कि कोई योग्य व्यक्ति नहीं है जो मुझे संन्यास दे सके, तो आपने आध्यात्मिक गुरु का चित्र रखते सामने गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का, और उस चित्र से वो संन्यास स्वीकार करते हैं और उनका नया नाम पड़ता है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। खुद ही संन्यास ले लिया गुरु से, और लायन गुरु थे वो, सिम्मा के समान। हाँ, तो उन्होंने कुछ ही दिनों में उनका मुख्यालय बनाया मायापुर में, चैतन्य गौड़िया मठ, और ऐसे 64 मठों की स्थापना पूरे भारत भर की उन्होंने। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक महान प्रवर्तक आचार्य थे। और जब बाग बाजार में उल्टा डंगा जो एक स्थान है कलकत्ता में, वहां वो प्रवचन दे रहे थे एक टेरेस में, तो उस समय ये युवक आया था प्रवचन सुनने। कौन? ऐसी भक्ति वेदांत अभय चरण, उनका मित्र उनको खींच के लेके आया था नरेंद्र, वो ऐसे पकड़ पकड़ के, धोती पकड़ के लाया था। चलो, तो जब गए तो बैठने वाले थे प्रवचन में, कहा अरे तुम तो बहुत पढ़े लिखे युवक हो, उठो और जाओ और प्रचार करो कृष्ण भावना का पाश्चात्य जगत में अंग्रेजी भाषा में। ये जब सुना उनसे, हाँ, तो प्रभुपाद ने उसको गंभीरता से लिया अपने गुरु की इस आज्ञा को। हाँ, प्रभुपाद कहा करते थे कि एक भी समय ऐसा नहीं है कि मेरे गुरुदेव मेरे साथ नहीं है। मैं अकेला अमेरिका भी गया तो मैं हमेशा अनुभव करता था कि मेरे गुरु और भक्ति सिद्धांत सरस्वती सदैव क्या है, मेरे साथ है। और प्रभुपाद, जब प्रभुपाद ने प्रचार भी किया, इतने सारे युवक युवतियां आए, तो प्रभुपाद कहा करते थे कि इन सबको मेरे गुरु महाराज ने आपको भेजा है मेरे पास। वो कहते थे कि आप सबको मेरे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने यहाँ मेरे पास भेजा है। तो हर समय हर सफलता के पीछे किसका गुणगान करते थे, अपने आध्यात्मिक गुरु का। यही वास्तव में एक योग्य शिष्य का गुण है। वो हमेशा सोचता है एका की आमार नाही पाए बल, अकेले मुझ में कोई शक्ति नहीं है, हाँ सारी जो देन है मेरे आध्यात्मिक गुरु की है। तो ऐसी बहुत सारी चर्चाएं हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में, कई घंटे बोला जा सकता है। तो संक्षेप में मैंने थोड़ा सा उनका गुणगान करने का प्रयास किया। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का स्मरण करना चाहिए, उनके बारे में बोलना चाहिए या सुनना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, विशेष रूप से कि इस कृष्ण भावनामृत के प्रचार में हमारे अंदर भी कोई शक्ति या सामर्थ्य हमें मिले और हरि नाम का उच्चारण करने के लिए। तो ऐसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद के अत्यंत प्रिय आध्यात्मिक गुरु थे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, श्रील प्रभुपाद के पिताए गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। किसी की कोई समीक्षा या प्रश्न हो एक हम से करेंगे, अन्यथा 6:30 बज गए हैं।